सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
छठे अध्याय में भगवान पांचवें श्लोक में कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानं, अपने आप को आत्मबल से उठाओ। कहाँ से उठाएं? कहते हैं कि आप लोग सब संसार सागर में गिरे हुए हो, वहां से अपने आप को उठना है। हम सब संसार के सागर में गिरे हुए हैं, वहां से उठना है। न आत्मानं अवसादयेत, अपने आप को और ज्यादा मत गिरा लो। अपने आप को और ज्यादा मत गिरा लो मतलब संसार में ऐसे कर्म करो जिससे कि आप जो है आस्ते 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 संसार को पार जा सको, संसार से पार जा सके। ऐसे हमें कर्म करने चाहिए, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। आत्मा ही भी आत्मना बंधु, आपकी आत्मा, यहाँ पर आत्मा मन हुआ, आपका मन ही आपका बंधु है, दोस्त है, और आपका ही आत्मा रिपु शत्रु भी है। तो कौन सी आत्मा, कौन सा मन आपका बंधु होगा और कौन सा मन आपका शत्रु होगा, भगवान छठे श्लोक में बताते हैं। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा नहीं वह आत्मा ना जीता। जिसने अपनी आत्मा को, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जीता जीता मतलब जिसने कंट्रोल कर लिया, छठे अध्याय का छठवां श्लोक, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों और शरीर को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, उसका शरीर एवं मन इंद्रियां जो है बंधु है। उसका शरीर मन इंद्रियां बंधु हैं। और अनात्मन हेतु, जिसने अपने आप को नहीं जीता, जिसके मन इंद्रियां और शरीर नियमन में कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है? शत्रुत्व वर्तते आत्म ही शत्रुवत। उसका मन, उसका शरीर आदि ये सब क्या है? शत्रुवत है। तो अगर मन आपका कंट्रोल्ड है, नियमित है, नियमन में है, तो वो मन आपका मित्र है। और जो मन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपका शत्रु है। सीधी सी बात है, अगर आप मन के स्लेव हो, मन के दास हो, तो वो मन आपका शत्रु है। और अगर आप मन के मालिक हो, मन के मालिक मतलब मन जो है आपके कहने के अनुसार चलता है, तब जो है वो मन आपका मित्र है। ऐसा जितात्मन है, ऐसा जिसने अपने मन इंद्रियों और शरीर को जिसने कंट्रोल कर लिया है, नियमन कर लिया है, वो आदमी कैसा है? प्रशांतस्य, वो प्रशांत है। देखो ये प्रशांति जो है सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन जो है ये शांति है, प्रशांति। जिसने अपनी आत्मा को, आत्मा मतलब मन इंद्रियों और शरीर को जीत लिया, प्रशांत जब परमात्मा समाहित है और साक्षात आत्मा के अंदर विद्यमान है, अपने आप को ध्यान में वहां समाहित कर रहा है, एक जगह लगा हुआ है, वो जीतात्मना कैसे बना? तो कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो। शीत उष्ण शरीर के लेवल पर, मान अपमान बुद्धि के लेवल पर, सुख और दुख मन के लेवल पर। उसने ये तीन द्वंद्वों के अंदर वो अपने आप को सम रखता है। जो आदमी सम रह सकता है उसने जीत लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, शरीर को जीत लिया। अच्छा, तो वो व्यक्ति फिर कैसा है भाई? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, उसको ज्ञान मिल गया। ज्ञान कहाँ से मिला? श्रवण काल में ज्ञान मिल गया। विज्ञान क्या है? श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन के अंदर उसको विज्ञान मिला, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? विशेष ज्ञान ये हुआ कि उसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अपरोक्ष अनुभूति क्या हुआ? उसको पता लग गया कि आत्मा मैं ही हूं, उसकी अनुभूति हो गई उसको, अपरोक्ष अनुभूति। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वो कूटस्थ है। अब कूटस्थ का मतलब क्या हुआ? अब वो विचलित नहीं होता। अब उसके चारों तरफ अगर विषय भी आ जाएं, विषयों को देख के वो विचलित नहीं होता। अज्ञानी क्या होता है? विषय को देख के विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसका मन चला जाता है विषयों के अंदर। अब ऐसा व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता। कूटस्थ विचिचेंद्रिय, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसने मन इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, विचितेंद्रिय। युक्त इति उच्चते योगी, इसको हम लोग युक्त कहेंगे, ऐसा व्यक्ति को हम योगी कहेंगे। और उसकी विजन क्या हुआ? उसकी दृष्टि अब कैसी है? समलोष्ट आत्मकांचन, समलोष्ट आत्मकांचन, मिट्टी पत्थर और सोना के अंदर सब में समान देखता है, समान देखता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसको सोने का दाम नहीं पता है। मिट्टी पत्थर और सोने का दाम उसको पता है, मगर वो सब में एक चीज देखता है, सब में एक चीज देखता है, मतलब सब में ब्रह्म देखता है, सब में ब्रह्म देखता है। उसका जो है विजन, उसका दृष्टि जो है बदल गई, उसकी दृष्टि बदल हो गई, अब वो सब में ब्रह्म रूप एक को देखता है। तो ये तो जड़ पदार्थ की बात हुई। अब उसकी दृष्टि जो है व्यक्तियों के प्रति क्या है? तो व्यक्तियों के प्रति भी वो कहते हैं सुहृद अरि शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधुसु पापेशु। सारे मनुष्यों को भगवान ने 9 किस्म के कैटेगरीज के अंदर भाग कर दिया। बोले इन सब में उसकी दृष्टि क्या है? इन सब में उसकी दृष्टि सम बुद्धि विशिष्यते, सब में सम है, सबको एक किस्म से देखता है। कौन क्या कर रहा है, मेरे को क्या लेना है, ऐसा उसका भाव है। चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, सब में उसका एक भाव है। अब ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए वो करता क्या है? योगी युंजित, ऐसा योगी सदा जो है उसमें योग में लगा रहता है। योगी युंजित कितनी देर तक? सततम, बराबर बराबर लगा रहता है। आत्मानं रहसि स्थितः, और सदा जो है वो अंतःकरण को उसके अंदर समाहित करने के लिए स्थित रहता है। चाहे वो गिरी गुफा हो, या अगर गृहस्थी है, सन्यासी है, तो वो पर्वत की गुफा में जाएगा, और गृहस्थी जो है वो अपने घर में एकांत में बैठ के करेगा ऐसी चीजें। एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी परिग्रह, एकाकी अकेला है, यत चित्त आत्मा, यत मतलब जिसने कंट्रोल कर लिया, किसको? चित्त को। चित्त का मतलब यहां हुआ मन, आत्मा का मतलब शरीर। यत चित्त आत्मा, जिसने अपने मन और शरीर को नियंत्रण में कर लिया है। निराशी तृष्णा रहित, तृष्णा रहित मतलब फल, ऐसा इतना फल हमें चाहिए ऐसा उसका चिंतन नहीं है, ऐसा उसे नहीं चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब हुआ कि वो जो है कोई संग्रह नहीं करता, संग्रह रहित है वो। परिग्रह मतलब संग्रह और अपरिग्रह मतलब संग्रह रहित। हम लोग देखो कितना संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं हम लोग। अपने जब भारतवर्ष में थे तो हर घर के अंदर ना वो एक एक स्टोर रूम होता है। तो हमारा अगर हीटर खराब हो गया कि हमारा टोस्टर खराब हो गया, हम फेंकते नहीं हैं, हम उसको संभाल कर रख देते हैं। वो 10 साल 20 साल वहाँ पड़ा रहता है, लगेगा कभी काम आ जाएगा, कभी कोई पुर्जा काम लग जाएगा उसमें, तो हम उसको संभाल के रखते हैं। मगर ये अपरिग्रह है, कोई संग्रह नहीं करता है। देखो तो सन्यासी का संग्रह करने की बात भी नहीं है, सन्यासी संग्रह नहीं करता। अब भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन, आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है। आप लोग ध्यान में बैठोगे, आसन कैसा होना चाहिए, आहार क्या होना चाहिए, विहार कितना करेंगे, ये सब के बारे में भगवान नियम बतलाएंगे, एवं योग को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण और उसका फल आदि भी कहना चाहिए। तो अब कोई आदमी अगर योग में सिद्ध हो गया तो उसके लक्षण क्या हैं, और हम योग करें क्यों, क्या मिलेगा हमें, तो भगवान इसका फल भी बताने वाले हैं कि अगर आप करोगे तो फल क्या मिलेगा। इसलिए अब यह प्रकरण आरंभ किया जाता है, उसमें पहले आसन का ही वर्णन करते हैं। अब पहले आसन के बारे में भगवान बताएंगे कि आसन कैसा हो, है आसन कैसा हो। 11वां श्लोक।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य,
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य
स्थिरमासनमात्मनः,
स्थिरमासनमात्मनः
नात्युच्छ्रितं नाति नीचम्, नात्युच्छ्रितं नाति नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्,
चैलाजिनकुशोत्तरम्
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्।
अब आसन कैसा हो, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, आसन जो है स्वच्छ स्थान पर बैठे, स्वच्छ स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बैठे। स्वच्छ स्थान पर क्यों, देखो भारत में आप करते हो ना तो वहाँ चींटियाँ बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं, तो अगर एक चींटी आ जाए, एक मच्छर आपको काट ले, तो आपका ध्यान जो है जहाँ पर लगा रहे थे वहाँ से तुरंत हटके आपके शरीर पर आ जाएगा। अच्छा यहाँ अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में तो मच्छर यहाँ तो बाहर होते हैं, भीतर हमारे यहाँ मनुत्री में मच्छर नहीं है और न ही चींटी है। तो क्या है यहाँ पर, हमारे यमुनोत्री में आपको जो है स्पाइडर मिलेंगे, छोटे छोटे स्पाइडर, कभी कभी वो बच्चे बग देख लेते हैं, छोटा सा बग आ गया। अब एक छोटा सा बग भी आप बैठे हो आसन के ऊपर में और बैठ के आपको बग जो है आपके शरीर पर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो आपका जो है ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, शुचौ स्थान, स्थान जो है स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छा फिर दूसरा कहते हैं तीसरे पाद के में, न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा बहुत लोगों का जो है मन करता है ना कि बड़ी ऊंची जगह में जाके हम ध्यान करें, किसी का मन होता है कि पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर चले जाएं, वहां पर एक क्लिफ हो और क्लिफ के ऊपर में हम बैठ जाएं। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो, तो परमात्मा बहुत नज़दीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से परमात्मा नज़दीक है, जल्दी सुनेगा। तो भगवान कहते हैं अति ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब वो क्लिप पर आप बैठे हो, नींद आ गई, लुढ़क गए, हो गया ना खत्म काम आपका। और न अति नीचम, अति नीचम का मतलब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाते हैं, बोलते हैं ऐसा भी नहीं करो, नीचे से डैम आएगा, पानी आ जाएगा। तो बहुत आसन ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अब किस चीज का बना हो आसन, कहते हैं चैल अजिन कुशोत्तरम। चैल कहते हैं कपड़े को, अजिन कहते हैं स्किन को, चमड़े को, और कुशोत्तरम घास को, कुसा घास। तो ये तीन चीज चाहिए आसन के लिए, तीन चीज आसन के लिए चाहिए। अच्छा कैसे बिछाएंगे, तब आपको उल्टा चलना होगा, पहले कुशाग्रास बिछानी होगी, कुशाग्रास बिछा के उसके बाद में आपको जो है मृग का चमड़ा या बाघ के चमड़े की छाल उसके ऊपर बिछाना होगा, उसके ऊपर कपड़ा देना होगा, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना होगा, तब आपका आसन तैयार होगा। ये तो बड़ा मुश्किल है, हमारे पास किसी के पास नहीं है ऐसा आसन है। अब कहाँ से मिलेगा आपको मृग छाल और या बाघ की छाल, बाघ का चमड़ा कहाँ मिलेगा? शंकराचार्य जी तो बैठे हुए हैं बाघ की छाल के ऊपर में, जितनी फोटो आप देखेंगे उनको आप देखेंगे बाघ की छाल, बाघ का सिर एक आप सामने है, छाल है उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये लेयर का मतलब क्या हुआ? तीन लेयर देने का मतलब हुआ कि मॉइस्चर, हीट, कोल्ड जो है, उष्ण और शीत जो है, आपके शरीर तक नहीं पहुंचे, शरीर तक नहीं पहुंचे, आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। फिर कहते हैं स्थिरम आसनम आत्मना, स्थान पर आसन कैसा होना चाहिए? वो स्थिर होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हम जो है बोट के अंदर करेंगे, हम जाते हैं मिसिसिपी रिवर के अंदर बोट के ऊपर बैठ के हम आसन करेंगे, तो अब वेव के अंदर हो तो बोट आपका ऐसे ऐसे हिलेगा। और या अगर आप सोचो कि नहीं नहीं अपने घर में रॉकिंग चेयर पर करते हैं आसन, तो सब तीनों लगा दिए हमने, कुशाग्रास भी बिछा दी, उसके ऊपर में स्किन भी लगा दिया, चमड़ा भी लगा दिया और चमड़े के ऊपर कपड़ा भी बिछा दिया, मगर रॉकिंग चेयर पर है। मगर यहाँ कहते हैं स्थिरम आसन होना चाहिए। अच्छा, आसन के बारे में एक चीज और आपको बता दें हम, ये आसन जो है शेयर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का आसन अलग अलग होना चाहिए, आसन शेयर नहीं करें। हमारे शास्त्रों में कहा है कि छह चीजें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, छह चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या क्या है? आसनम, शयनम, वस्त्रम, जाया, अपत्यम, कमंडलु, आत्मनम, सूची, एतानी परेशाय कदाचन। दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करें, परेशाय कदाचन, कभी नहीं। एक तो है आसन, दूसरा कहते हैं शयनम, बेड, आपका जो बेड है उसके ऊपर केवल आप ही सोए हैं। वस्त्रम, आपके कपड़े, आप अपने कपड़े पहने हैं, अब अपने मित्र के कपड़े पहनेंगे। अब आजकल तो ऐसा युग आ गया है, तब तो हम बात भी आजकल 6 फुट दूर से करते हैं। अगर आप दूसरे के वस्त्र पहन लो तो क्या होगा, सोचो आप, हैं? वस्त्रम, जाया मतलब वाइफ, अपनी पत्नी का भी एक्सचेंज नहीं करें, शेयर नहीं करें, जाया। अपत्यम, अपने बच्चों को भी शेयर ना करें, अपत्यम। कमंडलू, अब वो जो सन्यासी जो है वो कमंडलू है, कमंडलू अपना कमंडलू दूसरे को नहीं देते हैं, दूसरा का आप नहीं देते हैं, उसके पीछे जो है रीजन है, साइंटिफिक रीजन्स हैं। आत्मनम सूची एतानी, ये सब अपनी शुद्धि के लिए है, तो ये 6 चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आसन बिछाने के बाद में क्या करें? आसन बिछाने के बाद में क्या करना है? 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं,
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा,
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा,
यतचित्तेन्द्रियक्रियः, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्यात्,
उपविश्यासने युञ्ज्यात्,
योगम् आत्मविशुद्धये,
योगम् आत्मविशुद्धये,
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, योगमात्मविशुद्धये।
आसन बिछाने के बाद में तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठे। देखो अच्छी तरह से समझ लो, उस आसन पर सोना नहीं है और न ही उस आसन पर खड़े होना है। भगवान ने सीधा सीधा कह दिया उस पर बैठना है। तो आप सोचोगे कि भई हम अपना आसन बिस्तर पर लगा देते हैं, बिस्तर पर सो जाए, नहीं, वो ध्यान के लिए आसन नहीं बनेगा। तो उसके ऊपर में बैठना है। तो कैसे बैठे? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि आपका आसन सुख रूप हो। सुख रूप मतलब आपका जो पोस्चर हो वो पोस्चर जो है सुख स्वरूप होना चाहिए, कहीं अकड़ वगैरह महसूस ना हो। हम ऐसे बैठे हैं कि जिससे हमको सुख मिले, कोई तकलीफ ना हो। और क्या करना है, यत चित्त इंद्रिय क्रिया, यत मतलब कंट्रोल, नियमन करना। किसको किसको नियमन करें, चित्त इंद्रिय क्रिया, तीन चीजों को आपको कंट्रोल करना है। तो हम यत वर्ड को यत चित्त, यत इंद्रिय, यत क्रिय ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यत चित्त, चित्त मतलब किसको कहेंगे, चित्त मतलब मन, मन को कंट्रोल करना है नंबर एक। नंबर दो, यत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी नियमन करना है, संयमन करना है। यत क्रिय, यत क्रिय मतलब अपनी क्रियाएं। अब क्रियाएं किसकी हो सकती हैं, मन और एक इंद्रिय की हो सकती है, एक तो ये हुआ, मगर मन और इंद्रिया तो ऑलरेडी भगवान कह चुके हैं, फिर क्रिया किसके लिए कह रहे हैं। तो यहां क्रिया जो है प्राण के लिए है, प्राण के लिए है। तो अपने प्राणों को भी जो है नियमन करना है, संयमन करना है। देखो पतंजलि योग सूत्र के अंदर में अष्टांग योग है ना, आठ अंग हैं समाधि के लिए, यम, नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस श्लोक में पहले दो यम और नियम और लास्ट वाला जो है समाधि, ये तीन को छोड़कर भगवान ने पांच अंगों को इस श्लोक में उल्लेख किया है, पांच अंगों को उल्लेख किया है। देखो पहले तो आसन की बात उन्होंने बता दी, तत्र आसने उपविश्य, उसके ऊपर बैठ जाओ, सुख रूप आसन से बैठ जाओ, तो यम नियम आसन हो गया। आसन के बाद क्या आता है, प्राणायाम। देखो यत क्रिया जो है वो प्राण को इंडिकेट करता है, इसलिए वो प्राणायाम की बात यहां आ गई, यत क्रिया। प्राणायाम के बाद में क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं, अपनी इंद्रियों को जो है विषयों से हटाना, उसके लिए भगवान ने यत इंद्रिय वर्ड यूज किया है, यत इंद्रिय शब्द यूज किया, उससे हुआ प्रत्याहार। उसके बाद धारणा, धारणा के लिए भगवान ने कहा यत चित्त, यत चित्त। देखो पतंजलि योग सूत्र में और भगवान जो बताने जा रहे हैं उसमें भेद नहीं है, एक ही है। अच्छा तो ध्यान कहाँ है, अब बताते हैं, ध्यान भी बताएंगे, ध्यान भी बताएंगे आपको। तो प्राणायाम जो है, या तो ये प्राणायाम आप किसी से सीखें और सीख के करें तब तो ठीक है, नहीं तो तपोवन जी महाराज कहते थे कि प्राण विच्छन करो, प्राण विच्छन प्राणायाम का राजा है, ऐसा तपोवन जी महाराज कहते थे। प्राण विच्छन क्या होता है, अपने प्राण को आ रहा है जा रहा है उसको जो है केवल देखना, प्राण विच्छन उसको देखना, उससे क्या होता है, मन एकाग्र होता है, मन आपका जो है सांस के आने और जाने पर लगा हुआ है, एक जगह स्थिर हो रहा है, तो इसको हम ध्यान कहते हैं। फिर क्या करे, युंज्यात योगम आत्मविशुद्धे, योगम युंज्यात, योगम युंज्यात मतलब ध्यान का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे। अच्छा मगर क्यों करे, आत्मविशुद्धे, आत्मविशुद्धे का मतलब क्या हुआ, मन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए। आपको हमने कई बार बताया है जब मन भगवान की तरफ जाता है तो मन शुद्ध होता है, और जब मन संसार की तरफ जाता है तो मन अशुद्ध होता है। अब देखो जब आप अपना ध्यान के अंदर बैठे हो, निधि ध्यासन के अंदर बैठे हो, और आप एक कोई मंत्र लेके या एक कोई नाम लेके भगवान की एक कोई लीला लेके उसके ऊपर अगर विचार कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपका मन शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा कि ध्यान जो है उससे आत्मशुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। और ध्यान के अंदर, वेदांत के अंदर क्या कहते हैं, विपरीत भावना चली जाती है। ध्यान में अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हो तो ये जीवो हम देहो हम, ये जो भाव हमारा है, अभी हम अपने देह को जो है हम आत्मा मानते हैं, अपने आप को जीव मानते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये विपरीत भावना, हम हैं कौन, हम देह नहीं है, हम जीव भी नहीं है, हम कौन है, हम तो ब्रह्म है। तो ये जो भाव है ना, ये भाव खत्म हो जाता है, ये गलत जो धारणा है देहो हम, विपरीत भावना इसको हम कहते हैं, ये खत्म हो जाती है जिस समय आपके बाद में ध्यान के बाद समाधि लग जाएगी। समाधि के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। जब आपका साक्षात्कार होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो हमको आत्मविशुद्ध है, कैसे आत्मा की शुद्धि करनी है, आत्मा मतलब मन की शुद्धि कैसे करनी है, भगवान दूसरे अध्याय से बोलते आ रहे हैं। आपको साकाम कर्म करना है, आपके चेहरे के ऊपर कोई विकार नहीं है, आपको निष्काम कर्म करना है, आपको कर्मयोग करना है। देखो मैं यहाँ बैठे हुए भी आपके चेहरे को देख रहा हूँ कि आपके जो है कहने के ऊपर में आपके कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कर्मयोग करना है, दूसरे अध्याय से कहते आ रहे हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में भी कर्मयोग की प्रशंसा की। कर्मयोग से मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा उसके बाद हमको ज्ञान के प्राप्ति के लिए हम उपयुक्त होंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। ज्ञान कहाँ मिलेगा, श्रवण काल में ज्ञान होगा, ज्ञान केवल श्रवण काल में होगा। उसके बाद में फिर मनन करो, आपके ज्ञान के अंदर कुछ डाउट रह जाता है, मनन से वो डाउट वो संशय चला जाएगा, और फिर निधिध्यासन, निधिध्यासन से निर्विकल्प समाधि से आपका जो है विपरीत भावना देहो हम ये सब खत्म हो जाता है। पांचवें अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि आपको पहले चित्त शुद्धि करनी है, फिर गुरु उपसदन करना है, गुरु के पास जाना है। क्यों जाना है गुरु के पास में, हमारी लड़की की शादी कैसे होगी, कब होगी, गुरु जी बताओ, नहीं, श्रवण के लिए जाना है, गुरु उपसदन श्रवण के लिए जाना है, उसके पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है, उसके बाद में सर्व कर्म संन्यास ध्यान, और उसके बाद में उस ज्ञान के अंदर निष्ठ हो जाना है। ये प्रोसेस हमको बताया गया है। अब बताते हैं, अब आप सीट पर तो बता दिया, आपको आसन के बारे में बता दिया, आसन में बताने के बाद में फिर क्या कहा कि उस आसन पर बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ तो कैसे बैठे, कैसे बैठे, आपका पोस्चर क्या होगा, वो भगवान 13वें श्लोक में बता रहे हैं।
समम काय शिरो ग्रीवम,
समम काय शिरो ग्रीवम,
धारयन्न चलम स्थिरः, धारयन्न चलम स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वम्, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वम्, दिशश्चानवलोकयन्, दिशश्चानवलोकयन्, समं काय शिरो ग्रीवम्, धारयन्न चलं स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्।
समं काय शिर ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरं। समं मतलब सीधा, सीधा क्या चीज सीधी हो, शरीर, शरीर काय, शिर सिर, ग्रीवं गला, तो शरीर गला और सिर ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, सीधी लाइन में होना चाहिए। अब बहुत लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, चेयर पर बैठ के ध्यान करते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो पीछे वाला बैकरेस्ट नहीं लेना है, ऐसे नहीं बैठना है, आपको सीधा रहना है, चेयर पर आप बैठो मगर आपको सीधा बैठना है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका ये जो है गर्दन और सिर जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। धारयन अचलम, निश्चल। अब वो उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। आप बैठ तो गए हो, अब ऐसे ऐसे हिलते रहो, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्थिर स्थिर रहना है, अचलम स्थिरम। और ये कैसे होगा स्थिर? बाय एफर्ट। आपको एफर्ट दे, ध्यान रखना होगा कि हमारा शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। और क्या करें? दिशा चन अनवलोकन, और किसी दिशा में नहीं देखे। अब बैठ तो गए, अब आंख की पुतली से अब दाहिने भी देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अनवलोकन, देखो नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है। अच्छा, अनवलोकन। स्वनाशिका अग्रम संप्रेक्ष्य, अब अपने नासिका के अग्र में देखें, अपनी नासिका, दूसरे की नासिका नहीं, स्वम नासिका अग्रम, अपनी नासिका के अग्रभाग में आप अवलोकन करें। अवलोकन संप्रेक्ष्य, नासिका अग्र या भ्रूमध्य, यहां पर इस जगह पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको हमने आगे भी बताया है कि इसका ये मतलब होता है, देखो शंकराचार्य जी भी ऐसा लिखते हैं कि नासिका अग्रम में देखना मतलब पुत्री को यहाँ पर लाना जो है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये सिर दर्द हो जाएगा आपको तुरंत। अब दोनों आँखों को आप जो है बोले ऐसे टेढ़ा करके हमको इसको खाली इसी को देखना है, तब जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भगवान कहते हैं कि नासिका के अग्र में देखना मतलब जो है पुतली को स्थिर करना है, और अपनी ये आंखों की जो पलक है उस पलक को अर्ध निमिलित कहते हैं, उसको अर्ध निमिलित, ये काला वाला जो पोर्शन है उसको बंद कर देना है और खुला रहे, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन खुला रहे। क्या पर्पज है उसका? कि आंख खुली रहेगी तो विषय हम देखना शुरू कर देंगे, फिर तो संसार भीतर जाना शुरू हो गया, हमको तो संसार देखना नहीं है, संसार देखना नहीं है। इसलिए संसार को अगर नहीं देखना है तो अगर हम पुतली को बंद कर दें तो बस काम हो जाएगा, और पूरा अगर बंद कर दें तो क्या होगा? पूरा अगर बंद कर देंगे तो आप नींद में चले जाओगे, क्योंकि यही हमारी आदत है, सोने के टाइम में हम क्या करते हैं, आंख को बंद कर देते हैं। अधिकांश लोग मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और कुछ देर के बाद में फिर उनका पोस्चर देखिए, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वो ऐसे नीचे लुढ़क जाते हैं। अब भगवान ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी और गला और सिर सीधा रहना चाहिए, अब कहाँ सीधा है, अब तो सीधा रहा नहीं, क्यों ऐसा हो गया? नींद आ गई, नींद आ गई, शांति है, कोई कोलाहल नहीं है, कुछ नहीं है, बस नींद आ गई हमको। अच्छा, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अनवलोकन माने आंख की पुतली को स्थिर करना, आंख की पुतली को स्थिर करना, अनवलोकन, किसी तरफ नहीं देखना, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं देखना। और भगवान कहते हैं अगर पुतली स्थिर हो गई तो मन स्थिर हो गया। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि अगर हम पुतली को स्थिर कर लें तो मन स्थिर हो जाता है और समाधि लग जाएगी। फिर भगवान कहते हैं कि ध्यान के विषय में और परामर्श देते हुए 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
प्रशांतात्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्यमचित्तः युक्त आसीत मत्परः प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः
प्रशांत आत्मा, यहाँ आत्मा माने मन, मन जिसका प्रशांत है, प्रशांत है मतलब अब उसके अंदर कोई वृत्तियां नहीं है, वृत्तियां जो है सारी बंद कर दी हमने, वृत्तियों के जाने के जितने भी द्वार हैं उनको हमने बंद कर दिया। वृत्तियों के जाने के द्वार कौन कौन से हैं? तो ये जो है आँख है, कान है, नासिका है, टेस्ट है या स्किन है। तो हम तो अब जो है ऐसे आसन पर बैठे हैं कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, नंबर एक। दूसरा जो है आँख हमारी बंद है इसलिए अब विषय भीतर नहीं जा रहे। नासिका अब कोई जो है उसके अंदर स्मेल वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है, शब्द भी नहीं है, शब्द भी नहीं आ जा रहे हैं। अच्छा, कोई वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसका इम्प्लीकेशन ठीक से समझें तो याद करें तो कोई भी आपका रिकॉर्डेड टेप या कुंडालिनी मेट, कई लोग कुंडालिनी जागरण करते हैं तो फिर वो एक रिकॉर्डेड टेप लगा लेते हैं कि अब ये कुंडालिनी अब यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं। अब ये जब अगर हो रहा है, टेप बज रहा है, तो आपके मन में आपके कान से वृत्तियां भीतर जा रही हैं। मन फिर शांत कहाँ हुआ? मन तो शांत नहीं हुआ। जब तक आपके पास भीतर में वृत्तियां जाती रहेंगी मन कैसे शांत होगा? हमको तो मन शांत करना है। इसलिए किसी किस्म का भी टेप वगैरह सब वर्जित है, कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने साथ हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पहले आपको ध्यान करने के लिए कोई गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, वो बात दूसरी है, मगर उसके बाद में फिर अपने आप करना है आपको। हर बार गाइडेड मेडिटेशन नहीं होता है। अच्छा, विगत भी जब मन शांत होता है तो फिर एक भय आता है, मैं हूं कि नहीं हूं। जैसे ही वृत्तियां खत्म हो जाती है, आपका अहंकार भी खत्म हो गया, वृत्तियां भी नहीं है, इदम वृत्ति भी नहीं है, अहम वृत्ति भी नहीं है, फिर एक डर लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया, मैं मर गया क्या, एक भय लग जाता है, हूं कि नहीं हूं, आदमी डर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको जो निश्वास का कष्ट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से वापस आ जाते हैं। देखो, ये सारी की सारी मन की ट्रिक्स हैं। मन आपको कभी भी जो है उसके इल्यूमिनेटर तक जाने नहीं देगा, वो आपको बराबर रोकेगा। दुनिया भर के किस्म के ट्रिक्स लगाएगा, आपकी सांस बंद हो रही है, आप भड़बड़ा के उठ गए, आपको डर लगा देगा, पता नहीं वहां से वापस आ पाओगे कि नहीं आओगे, क्या मरना चाहते हो, भय। मगर यहां पर कहा विगत भी आपको किसी किस्म का भय नहीं करना है, किसी किस्म की चिंता नहीं करनी है, ध्यान के अंदर उसके फल की भी चिंता नहीं करनी है। ध्यान के बाद जो समाधि आएगी, समाधि लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर आप इसका चिंतन करना शुरू कर दोगे तो कभी भी समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि आपने फल की चिंता करनी शुरू कर दी, आपके मन के अंदर वृत्तियां शुरू हो गई। हमको तो वृत्तियां खत्म करनी है। चित्त वृत्ति निरोध योग, पतंजलि कहते हैं, चित्त मतलब मन की वृत्तियों का निरोध करना, उसको बंद करना ही योग है, योग है। और आप अगर जो है योग के बारे में, फल के बारे में सोचना शुरू कर दो ध्यान की सीट पर बैठकर, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, ध्यान लगेगा नहीं। जीवन फिर उस कहते हैं ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। देखो, जो सन्यासी है, जो किसी पर्वत में या हिमालय में जाके किसी गुफा में बैठकर ध्यान करता है, उसके लिए टोटल जो है ब्रह्मचारी व्रत निर्देश किया गया है। वहाँ पर किसी किस्म का पुरुष का स्त्री के साथ में कोई संग नहीं हो सकता, न अगर कोई स्त्री ध्यान कर रही है तो न वो पुरुष का कोई संग कर पाएगी, और अगर कोई पुरुष अगर वहाँ पर ध्यान कर रहा है तो किसी स्त्री का भी संग नहीं कर सकता। फिर हमारा क्या होगा? हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, हम तो सन्यासी भी नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे ध्यान करें, हम कैसे ध्यान करें? तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस गृहस्थी ने जो श्रवण मनन आदि में लगा हुआ है वो ब्रह्मचारी है, उसको हम ब्रह्मचारी मानते हैं। जो गृहस्थी श्रवण मनन में लगा हुआ है वो ब्रह्मचारी है। अगर आपको याद हो, और आप लोग अगर बहुत पुराने गुरुदेव के जो हैं भक्त हैं और आपने उनका कोई ज्ञान यज्ञ बहुत आगे अगर किया हो, तो 7 दिन के ज्ञान यज्ञ के अंदर जो भी भक्त आते थे कैंप के अंदर, सबको एक पीला गाउन पहनाते थे। पीला गाउन क्यों पहनाते थे? बोला, आप ब्रह्मचारी हो 7 दिन के लिए, ब्रह्मचारी हो। तो जो श्रवण मनन करते हैं उनके लिए अति जो है वर्जित है। अति वर्जित है मतलब अति खाना वर्जित है, अति सोना वर्जित है, अति टीवी सीरियल देखना वर्जित है। अगर आप अति नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचारी हो। किसी भी चीज की अगर आप अति नहीं करते हो गृहस्थी होकर, तो आप ब्रह्मचारी हो। अच्छा, तो यहां पर भगवान जो है संप्रज्ञात समाधि या सविकल्प समाधि की विधि बताई जा रही है। सविकल्प मतलब एक जो है विकल्प, एक वृत्ति रहेगी। अभी हमारे मन में क्या है? अभी हमारे मन में हजारों वृत्तियां आती हैं, हजारों वृत्तियां आती हैं। उसको हम एक वृत्ति में लाते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं। जब केवल एक वृत्ति चलती रहे तो उसको हम ध्यान कहते हैं। जब वो वृत्ति भी खत्म हो जाए तो समाधि लग गई, समाधि लग गई। तो जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप एक वृत्ति में भी आना बहुत कठिन है। आप जब ध्यान के सीट पर बैठोगे उस टाइम आप देखोगे कितने मन में वृत्तियां आती हैं, कितने थॉट्स आते हैं उस टाइम में। कहते हैं थॉट्स इस वास्ते आते हैं कि आपकी जो वासना है ना भीतर में, उस वासना के हिसाब से वो थॉट्स वृत्तियां आती रहेंगी। जब वो वासना कम होगी तो थॉट्स भी कम हो जाएंगे। वासना कैसे कम होगा ये सब तब आपको पता, मैं फिर नहीं अब रिपीट करता। तो वासना कैसे खत्म होगी, कम होगी, ये सब आपको पता है। फिर बताते हैं कि मन संयम्य, मन संयम मतलब विषयाकार वृत्ति शून्य मन होना चाहिए। कोई इदम वृत्ति अहम वृत्ति नहीं हो। मन को विषयों में जाने से रोकना है, माने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए, मन के ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। फिर कहते हैं भगवान मत चित्त, मत चित्त तो मई चित्तम, मई चित्तम का मतलब जो है आपका मन कहाँ होना चाहिए? मेरे में होना चाहिए, वासुदेव कृष्ण में होना चाहिए, मई चित्तम। और अगर आप वेदांतिन हैं तो भगवान के बदले वहां आत्मा लगा दो, आत्मा में आपका मन लग होना चाहिए। आगे भगवान जाके कहेंगे अहम आत्मा गुड़ाकेश है, मैं तो सबके दिलों में बैठा हुआ हूं। तो या तो अपनी आत्मा के अंदर लगाओ या भगवान के ऊपर में अपना मन लगाओ। मन भगवान के प्रति लगाना मतलब मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, प्रेम हो। अच्छा, मत परह, मत परह का मतलब क्या हुआ? यहां पर बता रहे हैं कि बुद्धि से निश्चित कर लो कि मैं ही परम हूं, इस दुनिया के अंदर मैं ही सबसे परम हूं और मुझे प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मत परा। तो भगवान ने दो चीजें हमसे यहां मांगी हैं। एक तो भगवान कहते हैं मत चित्त और एक मत परा है। एक मन है और एक बुद्धि है, मन और बुद्धि दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही भगवान कहते हैं कि आप दोनों ही मेरे को दे दो। शंकराचार्य जी कहते हैं देखो कई आदमियों का ऐसा होता है कि मन कहीं है और बुद्धि कहीं है, कहीं मन है। और वो बहुत एक एप्ट एक एग्जाम्पल शंकराचार्य जी देते हैं, किसी का मन स्त्री चित्त हो सकता है, किसी का मन जो है स्त्री चित्त हो सकता है, स्त्री चित्त हो सकता है ना, स्त्री में लगा हुआ है, मगर बुद्धि सोचता है कि मेरी स्त्री परम नहीं है, परम भगवान है या राजा है। देखो मन स्त्री में है और बुद्धि भगवान में है, मगर यहां भगवान क्या चाहते हैं कि आपका मन और बुद्धि दोनों कहां होनी चाहिए? मेरे में। आया आपको समझ में? भगवान ने मन और बुद्धि दोनों को मांगा हमसे, दोनों मांग दिया है, मत चित्त और मत पराया। मैं ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हूं, तुम अपना मन मेरे को दे दो, तुम अपनी बुद्धि भी मेरे को दे दो। युक्त आसीत समाधि कुर्यात उपविशेत। इस प्रकार इस संप्रज्ञात समाधि या सविकल्प समाधि में अपना जो है ध्यान लगाए। भगवत एकाकार चित्त वृत्ति का प्रवाह हो, एक वृत्ति चलती रहती है, वासुदेव 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 या राम 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 या आपका जो भी इष्ट भगवान है उसकी एक वृत्ति चलती रहे। कैसी वो वृत्ति होनी चाहिए? तो यहाँ पर भगवान रमन महर्षि कहते हैं तैल धारावत। तैल धारावत मतलब जब आप तेल या घी डालते हैं ना कढ़ाई के अंदर में, तो उसकी धार कैसे होती है? कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोई विच्छेद नहीं होता है, कोई विच्छेद नहीं होता है। उसी तरह वृत्ति का जो प्रवाह कैसा होना चाहिए, उसमें कोई बीच बीच में दूसरी कोई वृत्ति नहीं घुस जाए। तेज धारावत कंटिन्यूअसली वो चलते रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में ध्यान का फल क्या है।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।
युञ्जन एव सदात्मानं, यहाँ पर भी आत्मा का मतलब मन है, जिसका मन जो पीछे श्लोक में बताया गया कैसा हुआ, जीता हुआ है, जिसका मन जो है उसके नियमन में है, कंट्रोल में है, उसका मन उसका दास है, उसका दास है, ऐसा जीता हुआ नियंत्रित मन सदा समाधि अभ्यास में जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, अब मन तो मेरा नौकर है, हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा, ऐसा जिसका मन बन गया वो ऐसा अभ्यास करता है। योगी नियत मानस, समाधि अभ्यास के कारण क्या कर रहा है, मन को विषयों से निरुद्ध कर रहा है, निरुद्ध कर रहा है, विषयों से जो है हटा रहा है। अब उसके मन के अंदर वृत्ति क्या है, केवल एक वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? भगवान की वृत्ति है, और तो कोई वृत्ति नहीं है, अब विषय नहीं है, तो विषय जो है सारे के सारे निरुद्ध हो गए। ऐसे व्यक्ति को मिलता क्या है? शांतिम, शांतिम, ये है आपका ध्यान का फल, शांतिम। आप सोचोगे कि हमको जो है अब कुछ डॉलर मिल जाए, हम धनी हो जाए, मिलियनियर बिलियनियर हो जाए, वो नहीं होगा। तब आपको इतने कष्ट करने की कोई दरकार नहीं है, आप जो कर रहे हो करते रहो, कर्मयोग भी नहीं करना है, श्रवण मनन निधि ध्यासन कुछ नहीं करना है। अगर आपको शांति चाहिए, देखो बहुत लोग महात्माओं के पास में आते हैं, बोलते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसे भी बहुत हैं, मगर शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं है। महाराज कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ शांति का। शांति का उपाय ये करना होगा, आपको विषयों से अपने मन को हटाना है, मन को एक तरफ ले चलना है, भगवान की तरफ ले चलना है। मन और बुद्धि दोनों ही भगवान ने मांग लिए हैं आपसे। तब ये करोगे अभ्यास करने के बाद में, तब आपको शांति मिलेगी। शांति कैसी है? संसार उपरम से शांति मिलती है। संसार से आप, संसार तो छोड़ दिया आपने, सब वृत्तियां खत्म हो गई, इदम वृत्ति अहम वृत्ति खत्म हो गई, संसार से उपरम हो गए, तो ये सर्व वृत्ति उपरमा है। जितनी भी वृत्तियां हैं, वृत्तियों द्वारा जो हमको आगे मिलता था सुख, वो वाला सुख नहीं है। देखो सुख और शांति एक ही वर्ड है, एक ही चीज है, एक चीज है, सुख और शांति जो है एक है। हमको आगे जो विषयों से सुख मिलता था वो सुख नहीं है। ये विषयों वाला सुख कैसा है? वो वृत्ति रूप है। प्रिय मोद प्रमोद वाला सुख कौन सा है? वो वृत्ति के रूप में है। ये सुख कैसा है? बिना वृत्ति के है, ये बिना वृत्ति वाला सुख है ये। निर्वाण परमाम, इससे मिला हुआ निर्वाण परम यानी ये मोक्ष है। शांति पा लेना ये मोक्ष है, निर्वाण परमाम। तो भाई कहाँ है, किसके पास में है, किसके अधिकार में ये शांति है, ये मोक्ष है? भगवान कहते हैं मत संस्थाम अधिगच्छति। शांति कहाँ है? भगवान कहते हैं मेरे अधीन है, मेरे पास है। मेरे पास आओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे पास अगर आप आओगे तो मिलेगा, नहीं तो ये मिलने वाला नहीं है। मम संस्थानम मेरे अधीन है, और जो मेरे पास आता है उसको हम देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो शांति की खोज में जाता है वो सिद्धियों में नहीं अटकता। आप जब साधना करोगे ना, साधना करने के टाइम में सिद्धियां अपने आप आती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप देखोगे कई बार मन में सोचते हो और वो चीज आ जाती है, आपने सोचा और हो गया सिद्धि। अब आप अगर पकड़ के बैठ जाओ कि अरे तो मेरे को सिद्धि आ गई, मैंने सोचा और मिल गया, तब आप उस सिद्धि में ही रह गए, आप शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। जो शांति की खोज में जाता है वो सिद्धियों में कभी नहीं अटकता। अब भगवान हमें सविकल्प समाधि या संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि या निर्विकल्प समाधि की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे हमने आपको 12वें श्लोक में बताया था ना कि वहां पर जो है देखो पतंजलि योग सूत्र के 5 जो है स्टेप्स वहां बता दिए एक श्लोक के अंदर में, आसन से लेके ध्यान तक एक श्लोक के अंदर भगवान ने एक एक वर्ड के अंदर एक एक चीज बता दी थी। अब निर्विकल्प समाधि में जाने के पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है भगवान बताने जा रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, आहार कितना करें, विहार एंटरटेनमेंट कितना करें, कितना घूमें चलें, ये भी भगवान बताएंगे आहार विहार कैसा होना चाहिए आपका। तो भगवान अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं कि ध्यान आपका सफल कब होगा, ध्यान आपका सफल कब होगा। 16वां श्लोक,
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति,
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति,
न चैकान्तमनस्नतः,
न चैकान्तमनस्नतः,
न चाति स्वप्नशीलस्य,
न चाति स्वप्नशीलस्य,
जाग्रतो नैव चार्जुन,
जाग्रतो नैव चार्जुन,
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्तमनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन।
भगवान कहते हैं ध्यान सफल करने के लिए आपको नाति अस्नत योगो अस्ति, जिसने ज्यादा खा लिया, अस्न मतलब खाना, अति ज्यादा। अभी भी आगे मैं बता रहा था ना, किसी भी चीज में अति जो है वर्जित है, कहीं भी किसी चीज में अति ना करें। तो भगवान कहते हैं कि अति अस्नस्त न अति अस्नस्त योग अस्ति, जो ज्यादा खाता है उसके लिए योग नहीं होगा। ज्यादा खाने से क्या होता है आप सबको मालूम है, जब भर पेट खा लेते हैं उसके बाद में क्या चाहिए, खटिया चाहिए, सोना है, नींद आ गई। और ऑफिस में काम करते तो क्या करते हैं, माथा जो है इस पर लगा देते हैं टेबल के ऊपर में। अच्छा, पर प्रश्न आता है कितना खाएं? अब भगवान आपने कह तो दिया अति अस्नत ज्यादा खाने से ऐसा होता है, तो कितना खाएं बताओ। तो पूर्य तस्नेन अर्धम तृतीय उदकेन च वायु संचनार्थार्धम तु चतुर्थम अवशेष एत, पूर्य तस्नेन अर्धम, आपके पेट की जितनी कैपेसिटी है उसका आधा जो है अन्न से भरिए, आधा अन्न से भरिए। उसके बाद में तृतीय उदकेन, तो अपने स्टोमक का 4 भाग कीजिए, 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी, और चौथा भाग बोलते हैं वायु के लिए। अच्छा, हमको आश्चर्य जो होता है, हम अभी कई लोगों को देखते हैं तो खाना खा के भाई पानी नहीं पीना, खाना खा के पानी नहीं पीना, कितना खाएं फिर? भगवान शंकराचार्य जी तो कहते हैं 50% खाओ, 25% पानी और 25% वायु के लिए। अब जो लोग बेसी खा लेते हैं फिर उनको कहते हैं भाई आपको हजम के लिए फिर जो है पानी वानी मत पियो, उसको एसिड काम करेगा, गॉल ब्लैडर से जो बाइल्स आएगा वो काम करेगा, पानी नहीं पीना, पानी पीने से क्या होगा भाई डाइल्यूट हो जाएगा। देखो सब सोच है, डिफरेंट की सोच है। भगवान कहते हैं देखो अगर इस हिसाब से चलोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, आप करके देखो। अच्छा, शंकराचार्य जी ने निर्विकल्प समाधि के पहुंचने के पहले भोजन के बारे में कहा, क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्याम प्रतिदिन विच्छौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। भगवान कहते हैं क्षुद को क्या ये क्या है, बोलो ये जो आपका भूख जो है ना इसको एक बीमारी समझो, ये बीमारी जाने वाली नहीं है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, डायबिटीज जाता नहीं है, क्या करना पड़ता है, सारा जीवन दवाई खानी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भूख लगती है ना ये भी एक बीमारी है, 3 बार इसको दवाई देनी पड़ती है तब ये ठीक रहता है। तो उसको दवाई के रूप में जो है आप भोजन दें। प्रतिदिन हम भिक्षौषधम भुज्यताम, प्रतिदिन जो है भिक्षा रूप में लेके थोड़ा थोड़ा करके आप दीजिए। स्वादु अन्नम न तो याचताम, स्वाद अन्न मत मांगो, मगर विधि वसात अगर आपको मिल गया, आपके प्रारब्ध में लिखा है, आपके प्रारब्ध में अगर लिखा है कि आज आपको 56 भोग मिलेगा तो उस टाइम नहीं बोलो कि ये तो भिक्षा औषध हमको ये नहीं खाना है, आपकी विधि है, आपका प्रारब्ध है, आपको मिला है खा लो, मगर रोज 56 भोग नहीं मांगो। रोज बोलोगे 56 भोग चाहिए तब गड़बड़ है, विधि बसात मिल गया खा लो ठीक है। नचे एकांतम असनत, अब एक आदमी कहने लगा कि हम तो उपवास करेंगे, उपवास करके हम जो है बैठेंगे देखें ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। अब आप बताओ आपको उसका ध्यान कहाँ जाएगा, जिसने उपवास किया है उसका ध्यान पेट पर जाएगा, उसका ध्यान जो है मन नीचे जाएगा, मन ऊपर नहीं जाएगा, भगवान की तरफ नहीं जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। न चति स्वप्नशीलस्य, जो ज्यादा सोता है, आपने ज्यादा खा लिया तो अब सो गई, जो ज्यादा सोएगा उसके लिए भी क्या ध्यान है। और जागरूक तो नहीं बचा अर्जुन, अगर नहीं खाओगे तो जागते रहोगे, नींद थोड़ी आने वाली है। आप एक दिन उपवास करो, सारा दिन उपवास करके रात को सोने की चेष्टा करो, नींद नहीं आएगी। हम लोग जो है सोने के टाइम में कोई दूध पीता है, कोई थोड़ा सीरियल खाता है, कोई कुछ करता है कुछ करता है, क्यों, नींद आ जाए। तो अगर नहीं खाओगे तो जागते रहोगे, जागते जागते भी थक जाओगे और ध्यान नहीं होगा। तो जानो भोजन औषधि है, और एक चीज और जानो कि आप जो अन्न खाते हो वही अन्न आपको भी खाता है। आप अन्न खा के शरीर बना लिए, ये शरीर भी किसी का भोजन है, किसी का भोजन है मतलब कुछ तो जीवित काल में ही बैक्टीरिया आपके भीतर बैठे हुए हैं आपको खा रहे हैं, और मरने के बाद में तो फिर तो ऐसे हो ही जाता है। अगर आप क्रीमेटेड हो गए, उसके अंदर चूल्हे में डाल दिया तब तो राख बन गए, अगर आपको दफना दिया तो आप सोचो कितने कीड़े मकोड़े आपको खाते हैं, कितने खाते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अधिक खाने वाले का अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाला का योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल ना खाने वाले भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति है कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है। अपनी शरीर की शक्ति के हिसाब से जितना दरकार है उतना खाया जाए तो वो शरीर की रक्षा करता है, नहीं देता, बिगाड़ नहीं करता। जो उससे अधिक होता है वह कष्ट देता है, और जो प्रमाण से कम होता है वह रक्षा नहीं करता। इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाए, अन्न न खाए। तो कितना खाना चाहिए आपको बता दिया। अब उसके बाद में भगवान कहेंगे कि और भी कुछ बताना है आपको, कि आपको आहार विहार के बारे में बताएंगे, कितना कर्म करना है, कितना सोना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि जीवन नियमित होना चाहिए तभी सिद्ध होगा। ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्।